حق بابرکت اور پرنور مہینے سے ہم گزر رہے ہیں. جس مہینے میں حضرت ختمی عید محتضر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقے سے آپ لوگ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق کا بعض فقیر نے سلام کا کہنا یہ ہے کہ ہم عقائد کی ابتدا توحید سے بھی پہلے انسان سے کرتے ہیں، ایک انسان سے اس طریقے سے ابتدا ہوتی ہے کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے، اور پھر ہم توحید کا باب شروع کرتے ہیں. میرا جو پیدا کرنے والا ہے وہ کیسا ہے، عالم ہے یا جاہل ہے، قادر ہے یا مشکور ہے، رحیم اور رحمان ہے یا ظالم، عادل ہے یا نہیں. بس آیا میرا جو پیدا کرنے والا ہے، میرا جو پیدا کرنے والا ہے وہ کیسا ہے، میری عقل کامل ہے قانون بنانے کے لیے، کیا کیا میں اپنی زندگی کے روز مرہ کے مسائل کو اپنی عقل کے ساتھ حل کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے مجھے اپنے اعمال میں، میں جب صبح سے شام تک عمل انجام دیتا ہوں، کس کی پیروی کرنی چاہیے، اپنی پیروی کرنی چاہیے، عقل کی پیروی کرنی چاہیے، لوگوں کی پیروی کرنی چاہیے، دین کی پیروی کرنی چاہیے. اور پھر آخر میں آیا میرا اختتام کیا ہے، کیا میں فنا ہو جاؤں گا، کیا میں مٹی ہو جاؤں گا، یا نہیں مجھے کسی اور جہان میں جانا. یہی تمام سوالات ہم عقائد میں مختلف عناوین کے تحت گفتگو کرتے ہیں. میرا پیدا کرنے والا کون ہے، میرا پیدا کرنے والا کیسا ہے، کو ہم توحید میں بحث کرتے ہیں، وجود خدا اور صفات خدا. میری عقل کامل ہے یا نہیں ہے، کیا میں یہ کامل قانون بنا سکتا ہوں یا نہیں بنا سکتا ہوں، یہ بحث کرتے ہیں نبوت میں کہ آیا ہمارے لیے کسی ایک اور ہدایت کی ضرورت ہے یا نہیں، یا صرف اسی معلومات پر ہم اپنی ہدایت کا راستہ تلاش کر سکتے ہیں. یعنی یہ ہماری عقل، یہ ہماری جو ہے وہ محدود ہے، اور ہمیں ایک آسمانی ہدایت کی ضرورت ہے، لہٰذا ایک نبی آنا چاہیے جو ہمیں بتائے گا کہ ہمیں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے کیا کرنا. اسی طریقے سے اپنے اعمال میں ہمیں کس کی پیروی کرنی چاہیے، یہ بھی اسی بحث سے جڑی ہوئی ہے نبوت اور امامت سے، کہ کیا ہمیں امامت کی پیروی کرنی چاہیے، انبیاء کی پیروی کرنی چاہیے، اپنی خواہشات کی پیروی کرنی چاہیے، اپنی عقل کی پیروی کرنی چاہیے، یا معاشرے کی جانے کی پیروی کرنی چاہیے. یہ گفتگو ہوتی ہے نبوت اور امامت. اور قیامت میں ہم یہ بحث کرتے ہیں کہ آیا ہمارا اختتام کیا ہے، کیا ہمیں فنا ہو جانا ہے، یعنی ہمیں ہمیشہ کے لیے باقی رہنا. بس انہی سوالات کو ہم انشاءاللہ قرآن کافی دیں تو توحید، نبوت، امامت اور قیامت کے ذیل میں یہ جو بنیادی ترین سوالات ہیں انسان کے، اس پر روشنی ڈالیں گے. اب سب سے پہلے ہم خود عقیدے کے بارے میں، عقیدہ کس کو کہتے ہیں، اس پر تھوڑی سی گفتگو کر کے ہم اپنے اصل موضوع جو آج بیان کیا گیا ہے دین کی ضرورت، اس پر روشنی ڈالیں گے. ایک سلوات پڑھے محمد والا. اور یہ نکلا ہے اب اس سے، اب آپ کو معلوم ہے کہ اب کے مراسم ہوتے ہیں اور جس میں آپ ان کا شرکت کرتے ہیں. اب اس کا مطلب ہے گرا لگا، ناٹ ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم دو لوگوں میں گرا پیون لگا رہے ہیں، صحیح، اپنے زواج کا پیمت لگا. اب عربی زبان کی اپنی ایک لذت ہے، اپنی ایک داشنی ہے، اور واقعی جو عربی زبان سیکھتا ہے اس کو پتا، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ خدا نے کیوں، جو ہے آپ لوگوں میں آواز تو آ رہی ہے، خدا نے کیوں جو ہے وہ عربی زبان میں دین کو نازل کیا. इस जबान में इतनी डेप्थ है, इतनी इसमें इतनी गहराई है कि वाकई किसी जबान में खुदा के कलाम को लाजिम होना चाहिए। और जैसे जैसे इंसान इस जबान की जो है वो नजाकतों को देखता है, तब उसको महसूस होता है कि ये क्या जबान है। यहाँ भी इसका एक नजर हमें मिलता है मिसाल। अब तो कहते हैं सिंपल गिरा लगा है, लेकिन ये है अकीदा। अकीदा मैं ये नहीं चाहूँ, सिफत मुशब्बा है, यानी मजबूत व पायदार गिरा लगा। अकद और अकीदे में फर्क हो गया। अब सिंपल गिरा लगाने को कहते हैं, अकीदा कहते हैं मौका मजबूत और पायदार। हालात अब बढ़े हैं, सिफत मुशब्बा में जो है वो इस्तमरार पर दलालत करता है, पायदारी पर दलालत करता है। इसका मतलब ये है कि सिंपल गिरा नहीं है अकीदा। अकीदा जो है वो मजबूत और पायदार गिरा लगाने को अकीदा कहा जाता है। अब ये अकीदा बनता कैसे है, मैं एक प्रोसेस आपको बयान समझाना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम हमारे पास अकीदे बनते हैं। सबसे पहले हमारे जहन, हमारा जो जहन है उसमें वो मालूमात एक्सेप्ट करता है, कुछ मालूमात आती है, इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। अब इंफॉर्मेशन रिसीव करने के बाद हमारी अक्ल, एक जहन होती है एक अक्ल, अक्ल जो है उसको एनालाइज करता है, उसकी तजिया तहलील करता है, ये इंफॉर्मेशन वैलिड है नहीं है, सही है नहीं है, कितनी सही है कितनी सही नहीं है, ठीक है, एनालिसिस प्रोसेस होता है। बस यहां से सिर्फ मालूमात हासिल होती है, और यहां पर क्या होता है, अक्ल क्या करती है, मालूमात की उर्दू अरबी में हम कहते हैं तजिया और तहलील करती है, ठीक है, मालूमात पर वो गौर खोज करके एक नतीजे तक पहुंचती। तो यहां पे मालूमात का आप कह रहे हैं एनालिसिस, सबसे पहले मालूमात जहन में आती है, ठीक है, वो सिंपल मालूमात होती है, फिर अकल क्या करता है उसको तजिया और तहलील करता है, आया इसमें से सही मालूमात आए, मालूमात सही है नहीं है, सही है तो किस वजह से सही है, कितनी सही है, ये अकल में होता है। इसके बाद अकल के बाद फिर कल का मरहला, हम उस वैलिड मालूमात को एक्सेप्ट भी करते हैं या नहीं, दिली तौर पे तस्लीम करते हैं या नहीं करते। बहुत सारी चीजें हमारी मालूमात में होती हैं, लेकिन हम उसको दिल उस पर एक्सेप्ट नहीं करते। मैं मिसाल देता हूं स्पोर्ट्स की, जैसे एक हमारे मुल्क की टीम होती है, एक अपोजिट टीम होती है, मालूमात ये कहती है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम मजबूत है, उसी को जीतना चाहिए, लेकिन हम क्या, हम किसको फेवर करते हैं, अपनी टीम को फेवर करते हैं, यानी हमने उसको दिल से एक्सेप्ट नहीं किया उसकी सुप्रीमेसी को। तो बहुत सारी मालूमात होती है हमारे पास, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, दिल उस पर उसको दिल नहीं दे पाते। क्लास में हमें पता होता है कि फला शख्स सबसे ब्रिलियंट है, यही फर्स्ट आया, लेकिन हम कहते हैं नहीं ये नहीं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। बहुत सारी रियलिटीज होती है, लेकिन हमारा दिल उसको एक्सेप्ट नहीं करता। बस यहाँ पर मालूमात रिसीव होती है, यहाँ पर उनका एनालिसिस होता है, और यहाँ पर वो उसकी एक्सेप्टेंस होती है, उसको कबूल किया जाता है, उसको तस्लीम किया जाता है। और जब एक दफा इंसान किसी चीज को दिल से एक्सेप्ट कर लेता है, उसका दिल उसके सामने हाजिर हो जाता है, उसको कबूल कर लेता है, तो फिर उसके आजा और जवारे खुद ब खुद उसकी इताअत करते हैं उस मालूमात की। बस ये एक एक प्रोसेस है, ठीक है। जैसे मैं मिसाल देता हूं, हमारे सामने जब हमने थोड़ी सी शऊर आया, हमें थोड़ी सी हमारी जो है एज मैच्योर जिंदगी में हमने जब कदम रखा, हमें हमें मालूमात हुई कि खुदा है, ठीक है। अब जब खुदा है, हमने उसको अपनी लिहाज से देखा, हमने कहा हम खुदा को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमारे पेरेंट्स क्या है, हम एक इस्लामी माशरे में पैदा हुए, अगर मैं ही अगर किसी बेदी माशरे में पैदा होता, किसी जो है सेक्युलर माशरे में पैदा होता जहां खुदा को नहीं कबूल किया जाता, तो मैं भी नहीं कबूल करता। तो खुदा को इसलिए तो हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि हमारा माशरा उसको एक्सेप्ट करता, तो हम अकली दलाइल लेकर आएंगे खुदा के वजूद, ठीक है। इसको कहते हैं, इसको कहते हैं तस्दीक अकली। हम इस मरहले में पहुंच जाएंगे, हाँ दलाइल कहते हैं कि खुदा है, अकल हमारी कहती है कि अकली दलाइल मौजूद है कि खुदा है। बस ये जो मालूमात की हमने एनालाइज की और हमने कहा कि ये सही है, ये स्टेटमेंट कि खुदा मौजूद है, ये स्टेटमेंट ट्रू रियलिटी पर बेस्ड है, ठीक है। अब ये प्रोसेस यहां पर रुकता नहीं है, अब हमारा दिल उसको किस तरीके से कबूल करता है, ये चीज हमको मुसलमान माशरे में मिलती है। सब खुदा को कबूल करते हैं, यानी बज़ाहिर कबूल करते हैं, लेकिन उनके दिलों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। वो अपने यानी कहां पता लगता है, जब टकराव होता है, बॉस कहता है फला काम करो, आपको क्लीन शेव करना पड़ेगा, हमारी फॉर्म में आपको क्लीन शेव करना पड़ेगा, खुदा कहता है शेव करना है हराम, यहां पता लगेगा कि उसने खुदा को वाकई बस सिर्फ अपनी अकली मालूमात तक उसने रखा है या दिल से उसको एक्सेप्ट किया। इसको कहते हैं तस्दीक कल्बी। यानी कल्ब ने तस्दीक कर दी है, एक दफा अकल तस्दीक करता है, एक दफा दिल तस्दीक करता है, और जब दिल तस्दीक करता है तो खुद ब खुद इताअत आ जाती है, तो बोलने की जरूरत नहीं है कि आपने आपको खुदा की मुखालफत कर रहे हैं, आप क्रिएशन कर रहे हैं, ये तो बॉस है, वो खुदा है, बॉस कहां खुदा कहां, सही है। इसको समझाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद अमल करेगा और इजीली अमल करेगा। बात हम अंबिया की जिंदगी में देखते हैं कि उन्होंने इतने बड़े बड़े मुखालफत ताबूत के सामने खड़े हो गए, फिरौन के सामने खड़े हो गए, कैसे इतनी हिम्मत आ गई, कैसे इसकी वजह। अब इसमें भी अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊं क्योंकि हमारा फिर टॉपिक जो है वो अधूरा रह जाएगा। इसमें इसकी डिग्रीज होती है, हमारी जबान में कहते हैं मकबूलत तशकीक, यानी इसकी जिस तरीके से लाइट की डिग्रीज होती है, एक डिम लाइट होती है, एक थोड़ी और ज्यादा होती है, एक और एक बहुत ज्यादा लाइट, सूरज की लाइट होती है, इसी तरीके से ये एक्सेप्टेंस भी एक दफा बहुत हल्की एक्सेप्टेंस होती है, थोड़ी गहरी होती है, एक दफा ज्यादा होती है। अंबिया की आइमा की एक्सेप्टेंस कई गुना ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे डिफरेंस पता चलता है, जितनी जितनी ज्यादा एक्सेप्टेंस यहाँ होगी उतने ही आमाल आपके एक दिल में अखलाक में घुसते हुए कि हमें गुनाहों से बिलाकर हम जितना भी सोचते हैं हमसे गुनाह सरजद हो जाते हैं, एक गुफ्तगू है जिस पर एक डेढ़ घंटे की बात हो सकती है, कि वो कौन सी चीजें जो हमें इंश्योर करें, इंश्योरेंस दे, श्योरिटी दे कि अब गुनाह नहीं होंगे। क्या चीज हम हासिल करें कि उसके बाद हम फिर बीमा है, यानी उसके बाद क्या है, उसके बाद आप गुनाह नहीं करेंगे, वो क्या चीज है? वो ये इसको कहते हैं तालीम। अपने नीचे नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है? इसको कहते हैं तालीम। इस प्रोसीजर को कहते हैं इल्म हासिल करना, मालूमात इकट्ठी करना। चाहेंगे अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप लोग मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। अब घर जाके सोचेंगे आसान में बातें कहीं है, सही कहीं है, नहीं कहीं है, हकाइक पर मबनी है या ऐसे ही, ठीक है। इसको कहते हैं तफक्कुर, इस प्रोसेस को कहते हैं फिक्र करना, ठीक है। तफक्कुर, तफक्कुर के बाद क्या है, अखलाक की जबान में उसको कहा जाता है तज़क्कुर। लेकिन हम आसान करने के लिए इसको कहते हैं ईमान। कहते हैं ना बास चीजों का हमें इल्म है, अभी ये सिर्फ इस्लाम लाए हैं, ईमान इनके दिलों में दाखिल नहीं हुआ। वो ये है अभी सिर्फ इनकी मालूमात असल तक है, इन्होंने दिलों से एक्सेप्ट नहीं किया खुदा को। जिस दिन दिलों से एक्सेप्ट कर लेंगे खुद ब खुद अमल आ जाएगा। बस पहले तालीम होती है, फिर तफक्कुर होता है, फिर ईमान मोमिन बन जाता है। इसीलिए कुरान का जो जो मतलब नजर है, जो उसका टारगेट है, वो जो चाहता है, वो मुसलमान नहीं चाहता, मुस्लिम नहीं चाहता, मोमिन चाहता है। मोमिन कौन होता है? जो दिल से एक्सेप्ट है। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि इसी के बाद खुद ब खुद अमल साबित होता है। यानी फिर आप चाहे या ना चाहे, देखें कसरत, अब ये गुफ्तगू बहुत हमारी इसी में चली जाएगी। जब हमारा किसी चीज पर वाक्य दिल से अकीदा हो जाता है, उसको छोड़ना मुश्किल होता है। एक बाहिजाब खातून के लिए बहुत मुश्किल है, शायद मरना आसान है बेहिजाब होना। क्यों? क्योंकि ईमान आ गया उसके पास। अब उसको लाख आप मजबूर करेंगे तो भी वो अमल से दूर नहीं हो सकता, सही। बस ये प्रोसेस मैं आपको बताना चाहता था कि अकीदा जो है आपसे निकला है, आप यानी सिंपल ग्रेन लगाने को कहते हैं, अकीदा कहते हैं मजबूत और पायदार गिरह। ये कौन सी है मजबूत और पायदार गिरह? ये है। इसीलिए अकीदे को बार दफा दो चीजों में डिवाइड किया जाता है, एक अकीदे अकली और एक अकीदे कल्बी। हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए, ना ये। अलबत्ता ये इसके बगैर हासिल नहीं हो सकता, इस तरीके से ये इसके बगैर हासिल नहीं हो सकता। ये जरूरी है, ये भी जरूरी है, काफी नहीं है। हम यहाँ पे आके रुक जाए सिर्फ मालूमात हासिल कर लें, काफी नहीं, जरूरी है। मालूमात के बाद एनालाइज कर लें और अकली दलाइल से साबित कर दें खुदा है, अंबिया है, आइमा का बरकत है, कयामत होगी, जरूरी है, काफी नहीं। इसको हमें इसको दिल से एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। अब इसके उलमा अखलाक का ये मौजू जो है, उलमा अखलाक का ये मौजू जो है, उलमाए कलामी कलाम तकल्लमी का हमारी जो ज्यादातर पहले गुफ्तगू होगी इस पर होगी। फिर खुदा ने हमें टॉपिक दी कि हम अपनी क्लासों को आगे ले जाएं, तो फिर हम बताएंगे कि ये जो मालूमात को जो हमने साबित किया है, इस पे दिल को कैसे एक्सेप्टेंस लेकर आए, और फिर उसके बाद आमाल है और इतालत है। ये एक मुख्तसर सा मैं आपको, मामूलन जो है जो عمومی افراد ہیں، معاشرے کے عمومی لوگ ہیں، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں. خواص جو ہیں امام کے جو خاص اصحاب تھے، جو خاص جان ان کے جو ہیں وہ ایمان والے تھے، وہ یہ افراد. ہمیں یہاں تک پہنچنا ہے، یہاں پہ رکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ان شاء اللہ کوشش کریں گے پہلے اس مرحلے کو طے کریں اور پھر آگے اس مرحلے پر بھی جائیں. اب عقائد میں یہ جو آج کا موضوع جو کہا گیا ہے نہیں کی ضرورت، اصل میں عقائد میں چند بنیادی بحثیں ہیں. یعنی عقائد کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں کچھ ان چیزوں پر، ان چیزوں کی معلومات ہونا ضروری ہے. اور وہ بنیادی بحثیں یہ ہیں کہ آخر ہم عقائد کیوں پڑھیں، کیا ضرورت ہے عقائد پڑھنے کی، بھائی ہم کوئی اور علم حاصل کر لیں. جب تک کہ ہم ایک کی ضرورت کو محسوس نہیں کریں گے، ہم ہمارے میں وہ موٹیویشن نہیں ہوگی اس کو حاصل کرنے کے. اسی طریقے سے ہم خدا کی معرفت کیوں حاصل کریں، ہم خدا کے لیے جستجو کیوں کریں، خدا کی تلاش کیوں کریں، کیا ضروری ہے؟ ہماری زندگی چل رہی ہے، ہم صبح اٹھتے ہیں، آفس جاتے ہیں، آتے ہیں، ہماری زندگی چل رہی ہے، کیا ضرورت ہے ہم خدا کی تلاش کریں خدا ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اگر ہم ثابت کر دیں گے خدا ہے تو کیا ہوگا ہماری زندگی، اور ثابت کریں گے خدا نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ اس کو پہلے سالو کرنا ضروری ہے، پھر ہم خود اصل عقائد کی طرف آ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ پہلے ہمیں یہ بحث کرنی ہوگی کہ دین کیوں ضروری ہے، دین نہ ہو تو کیا ہوتا ہے، دین ہماری کون سی ضروریات کو پورا کرتا ہے، کیا دین کے بغیر بھی کامیاب زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ یہ بنیادی سوالات ہیں. کیا بے دین لوگوں میں اچھائیاں نہیں ہوتی، بھی اچھائیاں ہوتی، تو ہم دین کی دین پر عمل کر کے کیا کر لیں؟ دین کو جاننے کے بعد کیا ہم مشکلات میں مزید نہیں پھنس جائیں گے؟ کافی لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ پتہ ہی نہیں کرو تاکہ مشکل میں پھنسے، پتہ ہی نہیں کرو کہ نماز پڑھنی واجب ہے یا نہیں ہے، وہ رہا. یہ بنیادی سوالات ہیں کہ کیا دیہی معاشرے میں مہذب اور با اخلاق لوگ نہیں ہوتے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اصل اخلاق تو وہاں پایا جاتا ہے، یہ دیندار معاشرے ہیں لیکن یہاں پہ دین نہیں ہے، وہ بے دین معاشرے ہیں لیکن دینی اقدار وہاں پر ہے. تو پھر کیا ضرورت ہے ہمیں جو ہے دینی معلومات حاصل کرنے کی، ہم بھی بے دین بن جائیں، ہم جیسا اخلاق ہوگا ہمارا ان شاء اللہ. یہ بنیادی سوالات ہیں کہ جو آج کے معاشرے میں پوچھے جاتے ہیں. دین کو نہ جاننے سے کیا نقصان ہوگا؟ وہ جو ہزاروں لوگ جو اپنی زندگی میں مگن ہیں، کامیاب زندگی گزار رہے ہیں بظاہر، ہاں ان کو دین کے بارے میں علم بھی نہیں پتا ہے، وہ بہتر ہے. اگر ہم دین کو جان لیں گے تو کیا ہوگا، اور نہیں جانیں گے تو کیا نقصان؟ بس دین ہماری کون سی ضرورت کو پورا کرتا ہے، کون سی ضرورت کو ایڈریس کرتا ہے؟ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ دروازے یہ، یعنی دین کی ضرورت ہے. یہ جو آپ کو میں نے بیان کیا ہے، عقائد کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں پہلے اس کو سالو کرنا ہوگا کہ دین کیوں ضروری ہے. لہذا اب ہم اس موضوع پر آتے ہیں کہ دین کیوں ضروری ہے. اب خود دین پہلے اس کی ابتدائی پیسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تھوڑی سی اسکپ کرنی پڑیں گی کیونکہ ٹائم بہت تیزی سے گزرتا ہے. دین کے لغوی معنی کیا ہیں, دین کے اصطلاحی معنی کیا ہیں, قرآن میں دین کس معنی میں استعمال ہوا, انشاءاللہ کبھی وقت ہوا تو آپ کو بیان کریں گے. ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں کہ دین کیوں ضروری ہے, دین نہ ہو تو کیا ہوتا ہے. اور جب ہم یہ پتا کر لیں گے کہ ہاں نہیں دین واقعی ضروری ہے تو پھر ہم دین کی معلومات سے شروع کریں گے, عقائد سے شروع کریں گے اور پھر اس کے اعمال تک ہم آئیں گے جو پروسیس میں نے آپ کو بتایا. تو سوال یہ ہے کہ دین کیوں ضروری ہے. سب سے پہلی اس میں تقریباً سات یا آٹھ چیزیں ہیں, انشاءاللہ وقت ہوا تو میں سب کو بیان کروں گا. دین کا دعویٰ یہ ہے کہ دین انسان کے بنیادی ترین سوالات کے جواب دے. بنیادی ترین سوالات کیا ہیں؟ کچھ سوالات انسان کی فطرت میں موجود ہے جو ہر انسان حضرت آدم سے لے کر آج تک کا انسان, چاہے وہ کسی بھی جگہ پر پیدا ہوا ہو, اس کے ذہن میں یہ تین سوال ابھرتے ہیں اور وہ یہ تین سوال اسے تنگ کرتے ہیں. اس کا جواب چاہیے ہوتا ہے. انسان کی فطرت میں یہ تین سوال آتے ہیں. وہ کیا ہے؟ میں کہاں سے آیا ہوں, میری ابتدا کیا ہے, آیا میں بے شعور مادے سے خلق ہوا یا کسی باشعور ہستی نے مجھے خلق کیا. یہ ایک بنیادی سوال ہے جو ہر انسان کے ذہن میں اٹھتا ہے, چاہے وہ پڑھا لکھا ہو چاہے وہ پڑھا لکھا نہ ہو, یہ سوال اس کو اٹھتا ہے. دوسرا سوال, مجھے کہاں جانا ہے, میرا اختتام کیا ہوگا, دراصل مجھے مٹی بن جانا ہے, مجھے کسی اور دنیا میں جانا ہے, کیا ہوگا میرا. یہ سوال انسان کو انسان کے فطری وہ سوالات ہیں جو بنیادی ترین اساسی ترین سوالات ہیں. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ میں کس راستے سے یہاں تک پہنچوں گا. صبح سے شام تک ہم یہ سوچتے ہیں یہ کام کروں نہیں کروں, میں صبح فجر سے پہلے اٹھوں یا نہیں اٹھوں, میں اس کی ہیلپ کروں نہیں کروں, میں فلاں انتظام کروں نہیں کروں. یہ تین بنیادی ترین سوالات ہیں جو ہر انسان اس سے مواجہ ہوتا ہے, یعنی وہ اس کے اندر یہ سوالات پائے جاتے ہیں. دین کہتا ہے میں اس کے جواب دیتا ہوں, میں تم کو بتاؤں گا تم کہاں سے آئے ہو. تو کہتے ہیں توحید کے ذیل میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہارے اختتام کیا ہوگا, قیامت میں یا معاد کے ذیل میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اور میں تمہیں بتاؤں گا تمہیں کیسی زندگی گزارنی ہے, کس کوڈ آف لائف سے کس قانون کے تحت تمہیں زندگی گزارنی ہے. اور یہ ہم نبوت اور امام توحید کے ذیل میں ہی عدل آتا ہے. بنیادی جو ہمارے عقائد ہیں توحید نبوت اور قیامت ہیں. بس عقائد میں ہم یہ تین بنیادی ترین سوالات کے جوابات ڈھونڈ پاتے ہیں. بس دین کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ हमें ये पता चल सके आया हमारा कोई पैदा करने वाला है या नहीं, आया हमारा कोई अंजाम है या नहीं, हमें यहाँ पर किस तरह की जिंदगी गुजारनी चाहिए। ये वो बुनियादी तरीन सवाल हैं जो हर शख्स के जहन में उभरते हैं। और दीन कहता है मैं इसके आने को रंदा अपनी दलाइल पर मबनी जवाब दो। बस पहला जवाब ये हुआ कि दीन क्यों जरूरी है। दीन इसलिए जरूरी है कि दीन बुनियादी तरीन सवाल के जवाब देता है। इंसान के अंदर ये जो तीन बुनियादी तरीन सवाल उठते हैं इसके दीन जवाब देता है। नंबर दो, कायनात की हकीकी मार्फत, कोशिश करेंगे पावर पॉइंट के स्लाइड भी हो जाए। मुझे कल मुझे बहुत ज्यादा खूबियत की जो स्लाइड तैयार नहीं होती इसी इसको भी हम स्लाइड से बना लेंगे और अगले को भी कोशिश करेंगे ताकि स्लाइड में होता है जल्दी जल्दी हम लोग आगे चलते हैं। दूसरा दावा दीन का ये है कि मैं आपको हकीकी मालूमात फराहम कर सकता हूँ शेयर, लेकिन दुनिया की तमाम साइंसेस इस चीज की वजह से वजूद में आई। इंसान तलाश करता है इस लकड़ी की क्या हकीकत है, तो माइक्रोस्कोप में देखा जाए इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, इसे हर चीज के अंदर गहराई में जाना चाहता है इंसान में। उसको कहते हैं हम इससे जस्तजू, फारसी में कहते हैं कुंजकावी। इंसान हमेशा चाहता है पता, कभी यहाँ बाहर एक जोर से आवाज आएगी तो हम सब पता करना चाहेंगे आवाज क्यों आई है, क्या हुआ। रोड पे गुजरते हैं ना तो अगर कुछ लोग जमा होते हैं तो हर कोई देख रहा होता है, ये क्या है। इससे जस्तजू है इंसान के अंदर, फितरत में उसने रखी है इस जस्तजू को। दीन ये कहता है कि मैं तुमको ये जो तुम जस्तजू कर रहे हो ये अशिया की हकीकत क्या है, इस कायनात की हकीकत क्या है, ये जो साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी तहकीकात कर रही है कि बिलाकर हम इसकी हकीकत तक पहुंच जाए। दीन कहता है कायनात की हकीकत मैं बताऊं। दो तरह की हिस होती है, ये जो हवा से खमसा है एक तो हवा से खमसा हम आंख से देखते हैं कान से सुनते हैं, ठीक है, ये कहते हैं इसको कहते हैं इल्म के जराए, तहसील इल्म के जराए। अभी पूरा एक कई घंटों का लेक्चर है ये। दीन कहता है कि तहसील इल्म के जराए फकत ये नहीं है आंख कान फाइव सेंसेस नहीं है बल्कि और इल्म का जरिया, तो वो क्या है, वो है कल्ब रूह, बाद उसको रूह कहा गया है कल्ब का। कल्ब से हम मालूम हासिल कर सकते हैं, दिल से जिंदा दिल से हम देख सकते हैं इस दीवार के उस तरफ क्या, इस दीवार की हकीकत क्या। बस बतौर दीन के कायनात का एक जाहिर है और एक बातिन है। ये व्हाइट बोर्ड का एक जाहिर है जो आपको नजर आ रहा है, एक इसकी हकीकत है, एक मेरा जाहिर है जो आपको इस वक्त जाहिर हो रहा है, एक मेरा एक बातें है जो अंदर है। इस जाहिर को हासिल करने के लिए हम हवा से खमसा यूज करते हैं। तमाम एक्सपेरिमेंटल साइंसेस जो हैं वो ये माइक्रोस्कोप में देखते हैं ये चीज क्या है, ये ऑर्गेनिज्म क्या है, ठीक है, लेकिन कायनात के बातिन को देखने के लिए कल्ब चाहिए, रूह चाहिए, चश्मे बीना कहते हैं ना उसको, चश्मे बीना चाहिए, ठीक है। बस ये है बात यहां तक पहुंचने के लिए। ये काफी नहीं है, ये काफी नहीं है। अब इसकी अगर हकीकत तक पहुंचना है तो इसके बातें तक पहुंचना होगा। अब इसके हम डिटेल्स में नहीं जा सकते वरना बहुत हम पीछे रह जाए। खुलासे ये, दीन ये कहता है कि मैं तुम्हें कायनात की इनर इमेज दिखा सकता हूं, मैं तुम्हें कायनात की असली चेहरा दिखा सकता हूं। ये क्या, ये तो सिर्फ तुम जाहिर को एक्सप्लोर कर रहे हो। साइंस और टेक्नोलॉजी ने अभी सिर्फ जाहिर को एक्सप्लोर किया, इतना नाश कर दिया हमने, ये कर दिया वो कर दिया। असल तो वो अल्बिया थे, वो आइमा थे, जिन्होंने इस कायनात की हकाइक तक लोगों को पहुंचाया। अब इसमें बहुत सारे वाकयात मेरे जहन में आ रहे हैं, अगर मैं वाकयात में जाऊंगा तो हमारी गुफ्तगु यहाँ पे कम्प्लीट नहीं होगी। ठीक, लोगों ने किस तरीके से इस दुनिया में बैठकर जन्नत और जहन्नम को देखा, किस तरीके से वो इस प्रोसेस से, दीन के प्रोसेस से जब गुजरे, सैर व सुलूक के प्रोसेस से गुजरे, तो उनको दुनिया की हकीकत नजर आने लगी। ये जाहिरी मान मता उनके लिए बीच, क्यों? क्योंकि वो असल हकीकत, असल वाकियत को देख रहे हैं। पर दूसरा जवाब हमारा ये हुआ, हकीकी मार्फत। हकीकी मार्फत जो है वो हमें कौन देता है? वो हमें दीन देता है। अब इसी के ज़ेल में आप लोग का फॉर्मेट क्या है, इसमें गैप आना है या कंटिन्यूस क्लास है? गैप आना कितनी देर है? 10 मिनट। इंसान जो है, इंसान अमल के बगैर नहीं रह सकता, बल्कि इंसान की हकीकत उसके अमल। ठीक है, उस पर आयात थी पहले, इंसान अमल अंजाम देता है। ठीक है, ये अमल जो है बेस्ड करता है उसके नजरिए पर। उसका नजरिया क्या है फला चीज के बारे में? ठीक है, और नजरिया बेस करता है तो कहते हैं जहान बीनी। इसको कहते हैं डूज एंड डोंट्स। ठीक है ना, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और ये बेस करती है किसी पर, क्या है क्या नहीं है, यानी रियलिटी और रियलिटी का अपोजिट क्या होता है? फिक्शन भी उसमें आता है। आइडियलिस्टिक यानी ख्याली, गैर वाकई, तखयुलाती, जिसका वजूद नहीं। ठीक है, हम कोई भी अमल अंजाम देते हैं। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल मैं अभी नमाज पढ़कर आया हूं, तो मैंने अपने नजरिए में ये साबित किया था मुझे नमाज पढ़नी चाहिए। तब मैंने नमाज पढ़ी। आप लोग जो आज यहां आए हैं क्लास लेने के लिए, आपके नजरिए में आपने ये साबित किया कि हमको दीन की मालूमात हासिल करनी चाहिए। अब ये जो करनी चाहिए ये कहां से निकलता है? ये जहानबीनी से, यानी दीन रियलिटी है। لیے اس کی پابندی کرنی چاہیے. نماز حقیقت رکھتی ہے, اس لیے مجھے نماز پڑھنی چاہیے اور پھر میں نماز پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں آئیڈیالوجی. اس کو کہتے ہیں کانسیپٹ اباؤٹ یونیورس, جہان بینی کانسیپٹ. کوئی ایک ٹرم مجھے کتابوں میں نہیں مل سکی. کانسیپٹ اباؤٹ یونیورس یعنی کائنات کے بارے میں ہم پہلے ثابت کرتے ہیں فلاں چیز حقیقت رکھتی ہے. ٹھیک ہے, اس حقیقت کے بارے میں ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے, اور پھر ہم عمل انجام دیتے ہیں. یعنی یہاں ہم ثابت کرتے ہیں خدا ہے. اگر خدا ہے تو ہمیں خدا کی پیروی کرنی چاہیے اور پھر ہم خدا کی پیروی کریں. اگر نہیں, ہم یہاں ثابت کرتے ہیں خدا نہیں ہے, خدا نہیں ہے تو پھر ہمیں خدا کی پیروی بھی نہیں کرنی چاہیے. جو چیز ہے ہی نہیں اس کی کیا پیروی کرنی چاہیے, پھر ہم نماز بھی نہیں پڑھیں گے. بس ان میں ایک لنکیج ہے. جو ویسٹرن فلاسفرس ہیں, مغربی فلاسفر, وہ پوری جان کو کوشش کی کہ ان دونوں لنکیج کو توڑ دیں. وہ کہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کا نظریہ آپ کی جہان بینی کے مطابق ہو, کیونکہ بے دینی لانا چاہتے تھے معاشرے میں. تو انہوں نے کہا آپ اپنی جہان بینی میں ثابت کر دیں خدا ہے, لیکن اپنے نظریے میں لازمی نہیں ہے کہ خدا کی پیروی کرنی چاہیے. وہاں پہ اس کو اپنا رب مان لیں, رب کی اطاعت کرنی چاہیے, یہ ضروری نہیں کسی اور کی اطاعت کرنی چاہیے بس. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا مکتب فکر, کسی بھی اس کو کہتے ہیں اسکول آف تھاٹ. آپ لوگ سنتے رہتے ہیں پڑھا اسکول آف تھاٹ, پڑھا اسکول آف تھاٹ. اسکول آف تھاٹ بنتا ہے اس کے جہان بینی اور اس کی آئیڈیالوجی کو جب ہم ایک جگہ پر رکھتے ہیں تو وہ اسکول آف تھاٹ بنتا ہے. اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکتب فکر. آپ لوگ کی اردو ٹھیک ہے, مکتب فکر. ہر مکتب فکر کی ایک اپنی جہان بینی ہوتی ہے. جہان بینی یعنی کائنات کے بارے میں اس کا اصل میں نظریہ, ایک براڈ ٹرم ہے ہماری اردو میں. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ ایک ٹرم ہے, وہ عربی میں ٹرم. کائنات کے بارے میں اس کا جو تصور ہے ہر مکتب فکر کا, کائنات کے بارے میں خاص تصور ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اسی خاص تصور سے اس کی ایک خاص آئیڈیالوجی بنتی ہے جس سے وہ پھر پہچانا جاتا ہے. دیکھیے جہان بینی, اب یہ جو جہان بینی ہے براڈلی ہم اس کو دو حصوں میں, یعنی بہت ہی اوپر جا کے اگر ہم اس کی کلاسیفیکیشن کریں, بہت ساری کلاسیفیکیشن ہے اس کی کتابوں میں, لیکن جو بیسک کلاسیفیکیشن ہے وہ ہے الہی جہان بینی اور الہادی جہان بینی. یہ بہت بڑی, جس کو کہتے ہیں کہ اوپر جا کے ہم ایک کراس بھی اس کو جب کلاسیفائی کرتے ہیں جہان بینی کو, تو دو میں آتی ہے. اس میں اس کی بہت ساری شاخیں ہیں, اس کی اپنی شاخیں. ٹھیک ہے, الہی جہان بینی کیا کہتی ہے اور الہادی جہان بینی کیا کہتی ہے, اس کو میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو, پیچھے والوں کو نظر آ رہا ہے یہاں تک ہم نیچے چلتے جا رہے ہیں؟ ہاں نظر آ رہا ہے. دیکھیں الہادی جہان بینی اور الہی جہان بینی میں چند بیسک ڈفرنس ہیں. और उस बेसिक डिफरेंसेस से फिर आगे डिफरेंसेस पता चलते हैं। जो इल्हादी जहानबीनी है वो कहती है कायनात की इब्तिदा क्या है, बेशऊर मादे से होती है, मैटर से होती है, ठीक है। बस इल्हादी जहानबीनी और इलाही जहानबीनी, ये क्या कहते हैं, कायनात की इब्तिदा बेशऊर मादे से हुई है। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं बाशऊर आलिम कादिर हकीम खुदा से हुई। आगे ये क्या कहते हैं, हमारी अक्ल काफी है यानी मालूमात के जराए, इल्म हासिल करने के जराए, इस कायनात की हकीकत को हासिल करने के लिए, यानी अगर मुझे इस टेबल की हकीकत तक पहुंचना है, इसके इनर डेप्थ तक पहुंचना है, ठीक है, तो मेरी ये जो हवासे खमसा है और अक्ल हिफायत करती है। मैं अगर कायनात के वो जो पीछे वाली बात, मैं कायनात की इनर कोर तक पहुंचना चाहता हूं, मेरे पास हिस और अकल काफी है, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जहानबीनी क्या कहती है, कहती है तुम इससे सिर्फ जाहिर कायनात को एक्सप्लोर कर सकते हो, इस कायनात पे एक बातें हैं, इसलिए तुम्हारी अकल ना काफी है, इसलिए एक आसमानी वही की जरूरत है जो तुम्हारी हिदायत करे, जो तुम्हें बता दे। बस जब ये कहता है हमारी अकल काफी है, तो कानून कोड ऑफ लाइफ जो है, हम जो कानून बनाएंगे अपने लिए वो किसके जरिए बनाएंगे, अकल के जरिए, क्योंकि अकल हमारी काफी। लेकिन ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अकल काफी नहीं है, बस हमें क्या है, वही की जरूरत है, एक आसमानी मैसेज की जरूरत है। लिहाजा कानून भी कौन बनाएगा, कानून हमारी अकल नहीं बना सकती, कानून जो है आलिम मुतलक हस्ती यानी खुदा बनाएगा। देख रहे बेसिक डिफरेंसेस कहां कहां आ रहे हैं, एक तो इब्तिदा, हमारी इब्तिदा कहां से हुई, अब हमारे जिंदगी के बारे में हमें कौन कानून देगा, किस कानून के तहत हम अदावत करेंगे, किस कानून के तहत हम माशरे को मुनज्जम करेंगे, ये कहते हैं हम खुद बनाएंगे, ये कहते हैं नहीं आप खुद नहीं बना सकते, माशरा कामयाब माशरा नहीं रहेगा, आपको किसी आसमानी ताकत जिसने हमें हल किया है उससे कानून को देना होगा। तीसरी चीज क्या कहते हैं, कहते हैं हम पानी हैं, दुनिया पानी है, या दुनिया के बजाय हम पानी हैं, और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं हम क्या है, इंसान दो चीज का मजमूआ है, जिस्म रूह, ये क्या है, बाकी रहने वाली है, इस बहस को आया हमारी इब्तिदा बेशऊर मादे से हुई है या बाशऊर खालिक से हुई है, इसको हम तौहीद में इंशाअल्लाह आपके सामने पेश करेंगे। इन दो बहसों को, आया हमारी अकल काफी है या नाकिस है, आया हमारी अकल एक फायदा और एक मजबूत कानून हमें दे सकती है या नहीं दे सकती, इसको हम जरूरत है वही में नबूवत में इसको डिस्कस किया जाता और आया हम पना होने वाले हैं या नहीं, हमारे पास एक ऐसी चीज है कि जो हमें हमेशा जिंदा रखेगी, बाकी रखेगी, जावेदा रखेगी, वो हम कहां बहस करेंगे? आयामत या महान होंगे, ये जहां दीनी है इलाहादी के बुनियादी नजरियात तसव्वुरात और ये जहां दीनी है इलाही के बुनियादी तसव्वुरात। अब इनको हमें बहस करना है, इसलिए हमें दीन को जानना जरूरी। किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर हम फर्ज करें अभी ये तय नहीं करते कौन सही है कौन गलत, अभी इस पर ये तो तौही में बहस करेंगे इंशाल्लाह, दलाइल देंगे, इनके दलाइल क्या है, इनके दलाइल क्या है, किसके दलाइल कमी है, किसके दलाइल सही है, नबूवत में इसको बहस करेंगे, कयामत में इसको बहस करेंगे, अभी ये बहस को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के, ऐसे ही देखते हैं कौन सा मॉडल जो है वो बेहतर। ये मॉडल कहता है तुम बेशऊर मादे से समझो, ये मॉडल कहता है तुम गीच हो जाने वाले, तुम मट्टी हो जाने वाले, फना हो जाने वाले, तुम्हारी कोई हुकत नहीं। ये मॉडल कहता है, ये मॉडल कहता है तुम्हें एक बाशऊर खालिक ने खर्च किया, ये मॉडल कहता है तुम्हें बाहदब जिंदगी गुजारनी है, तुम्हें जुम्मेदार जिंदगी गुजारनी है, तुम्हें एंड की तरफ बढ़ रहे हो, उस एंड को बेहतर कर सकते हो। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए ये इस इनके दलाइल को छोड़ दें कौन सही है और कौन गलत है, सिर्फ ऐसे ही दो मॉडल को देखें, तो देखें कि जमीन और आसमान का इन दो मॉडल्स में फर्क है। ये हमको हदफ देता है, ये हमें एक बाहदफ इंसान बनाता है, ये हमें जुम्मेदार इंसान बनाता है, ये हमें जावेदानगी देता है, हमेशगी देता है। अब हमें ये पता करना है आया ये सही है या नहीं, लिहाजा दीन की जरूरत को यहां पर दीन की तहकीक करनी होगी। क्यों? क्योंकि ये मॉडल जो है बज़ाहिर बहुत वैल्यूएबल लग रहा है, तो अब हमें दीन की तहकीक की जरूरत है, और दीन की तहकीक हम कहां से शुरू करते हैं, अकाइद से शुरू करते हैं, लिहाजा हमें अकाइद पढ़ना ठीक। बस हमारा दूसरा जवाब क्या हो गया, हकीकी बात, दीन हमें क्या देता है, दीन क्यों जरूरी है, नंबर एक हमें बुनियादी तरीन सवालों के जवाब देता है, नंबर दो हमें हकीकी मारिफत देता है। अब तकरीबन छह या सात जवाब हैं मेरे, मुझे काफी दुखानी गुफ्तगु हो गई। तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि दीन कहता है मैं तुम्हें हकीकी लज्जत और सुकून देता हूँ, इसको हम इंशाल्लाह अपने थोड़े से ब्रेक लेने के बाद तैयार करेंगे। इस जवाब पर मुकम्मल अगर एक ये अशेख तहरी ने इसको बहस किए कहीं आप लोग पढ़े शायद सुखन में या कहीं पता नहीं, अगर आप कोई शख्स मुसलसल नमाज ना पढ़े आहिस्ता आहिस्ता खुदा का इनकार कर बैठेगा, बस ये प्रोसेस जो है टू वे है, मजबूत अकीदा मजबूत अमल को लेकर आता है, फासिद अकीदा फासिद अमल को लेकर आता है, बरक्स फासिद अमल फासिद अकीदे को लेकर आता है, और सही अमल आप देखें बाज दफा बाज लोग
کافر ہوتے ہیں دوسرے مذہب کے ہوتے ہیں، کبھی کبھار وہ ایک ایسا عمل کر دیتے ہیں خدا ان کی ہدایت کر دیتا ہے مسلمان ہو جاتے ہیں. ایسے میں خود جانتا ہوں کون میں ایسے افراد کو کہ جو مثلا میری کلاس کل میرا کلاس کر لو جو عراق کی فوج ہے ٹھیک ہے اس کی پوری فیملی جو ہے وہ کرسچن اور کرسچن مذہبی بھی ہیں، اس کے چچا بشپ تھے اور اس کے والد فادر تھے اور پتہ نہیں کس طرح کے مذہبی عیسائی تھا. جن میں جو ہے وہ قیدی بنتا ہے ایران کی ڈیتھ خانے میں آتا ہے، وہاں پہ کوئی علماء آتے ہیں اس کو ہدایت کرتے ہیں، وہ مسلمان ہوتا ہے، مسلمان کے بعد شیعہ ہوتا ہے، شیعہ ہونے کے بعد عالم دین بنتا ہے قوم میں جا کر. میں نے اس کو پوچھا تھا کہ کون سی چیز ہے جس میں تم سمجھتے ہو کہ تمہیں کہاں سے کہاں کا سفر کیا ہے. اس نے کہا کہ ایک دفعہ یعنی ہمیں آرڈرز ہوتے تھے کہ آپ کو ایرانی فوجیوں کو پانی نہیں پلانا، اور بہت عراق کے جو ہے ریگستانوں سے گزرنا ہوا کرتا تھا. تو ایک دفعہ جو ہے کسی ایرانی نے امام حسین کا واسطہ دے کے مجھ سے کہا کہ امام حسین کے واسطے دو گھونٹ پانی چاہیے، اور کیونکہ عراقی علاقے کوئی بھی مذہب کا ہو لیکن وہ امام حسین سے خاص عقیدت رکھتا ہے کربلا کی. تو کہا میں نے کہا اس نے امام حسین کا واسطہ دیا تو میں اپنا پانی میں دے دوں. تو اس نے کہا کہ شاید وہ جو میں نے عمل کیا امام حسین کے لیے تو شاید امام حسین نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور یہ
تھوڑا آپ نے ذہن کریں گے. براہن سے گزارش ہے کہ سوالات کا سلسلہ ان شاء اللہ دوبارہ شروع کریں گے، پہلے گفتگو تمام ہو جائے. آپ زحمت ہوگی آپ لنچ اپنا کر لیں، ریفریشمنٹ وغیرہ سب لوگ تھوڑی دیر بریک کر لیں اور پھر ان شاء اللہ کے سلسلے کا ان سے آغاز کرتے ہیں. آپ کے سلسلہ میں پتا ہوا تھا اور پروگرام کے اختتام تک ان شاء اللہ جاری رہے گا. آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہیں ان کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر کے رکھیں، ان شاء اللہ آبا صاحب کے سوالات کے آپ کو پانی پنندہ جوابات دیں ان شاء اللہ. میں محمد والے محمد سلام
پاس. جبکہ ایک پروسیس ہے
चीज़ों पर यकीन रखने के लिए कि सबसे पहले हम जहन हमारी मालूमात एक्सेप्ट करता है, उसके बाद अक्ल उसको एनालाइज करती है, उसके बाद कल्ब जो है उसको एक्सेप्ट करता है, और उसके बाद फिर आमाल अंजाम पाते हैं, हम एक्ट्स करते हैं। बस ये जो अक्ल हमारा तज़िया और तहलील करता है इसको कहते हैं अकीदे अकली, और जब हमारा दिल उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको कहते हैं अकीदे कल्बी। असल जो दीन हमको ले जाना चाहता है वो अकीदे कल्बी तक ले जाना चाहता है, फकत अकली तक उसको महदूद नहीं रखना चाहता। इसके बाद हमने आपको बताया कि अकायद की बाकायदा गुफ्तगू शुरू करने से पहले, यानी तौहीद के खुदा है या नहीं है इसकी गुफ्तगू करने से पहले कुछ बुनियादी गुफ्तगू है, और वो ये है कि हम अकायद क्यों पढ़ें, हम खुदा की तलाश क्यों करें, क्या जरूरी है हम खुदा की तलाश, हजारों चीजें जिसकी हम तलाश नहीं करते। मैं डॉक्टर हूँ, मेडिकल डॉक्टर हूँ, तो मैं जाके दूसरे मैं इंजीनियरिंग के बारे में मालूम नहीं हासिल करता है, तो क्या जरूरी है कि मैं खुदा के बारे में तहकीक करूँ, जस्तजू करूँ, तलाश करूँ। और यहीं से दीन की जरूरत की बहस शुरू होती है कि आया दीन क्या करता है हमारे लिए, क्या चेंजेस लेकर आता है, हमारी कौन सी मुश्किल को हल करता है, लिहाजा दीन क्यों जरूरी है ये हमें पहले पता होना चाहिए। इसके जवाब के लिए पहला जवाब हमने ये दिया कि दीन जो है इसलिए जरूरी है कि दीन बुनियादी तरीन सवाल के जवाब देता है, और वो क्या है, बुनियादी तरीन फितरी सवाल क्या है जो हर इंसान के जहन में आते हैं, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे किस तरह की जिंदगी गुजारनी चाहिए। इन तीन बुनियादी सवाल जो कि हर इंसान के जहन में होते हैं इसके जवाब दीन कहता है मैं देता हूँ, मेरे पास इसके कारण बुनंदा जवाब। बस पहला जवाब यह हुआ, नंबर एक बुनियादी सवाल के जवाब, दूसरा हकीकी मार्फत। दीन कहता है कि कायनात के बारे में मैं तुम्हें उसके हकायक तक ले जा सकता हूँ, उसके इनर डेप्थ तक, रियल डेप्थ तक मैं ले जा सकता हूँ। यहाँ तक हमारा दर्स तकरीबन खत्म हुआ है, अगले हफ्ते जो हम बहस करेंगे इसी गुफ्तगू को आगे ले जाएंगे कि एक और दीन का दावा यह है कि मैं तुम्हें हकीकी लज्जत व सुकून इनायत करता हूं। अब इसके जो डिटेल्स हैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपको मैं बयान करूंगा। हकीकी आइडियल, हर इंसान किसी आइडियल की तलाश में है, हकीकी आइडियल, रियल आइडियल मैं तुम्हें पसंद करूंगा। इसी तरह इंसानी माशरे का सबसे बड़ा जो मसला है वो है अदालत इज्तिमाई, सोशल जस्टिस, माशरे में अदल कायम करना। दीन का दावा ये है कि मैं हकीकी अदालत का कानून तुम्हें दे सकता हूँ। अब ये फिर इंशाल्लाह आपको हकीकी आजादी और कुछ और चीजें हैं जो इसमें, जो इंसान का हदफ फिलकत क्या है, उसका उसको कहाँ तक पहुंचना है वो भी है, और एक दो और चीजें भी हैं सारी अभी बता दूंगा, तो फिर कल अगले सेशन में शायद इतनी ज्यादा वो इंटरेस्टिंग ना है। अब मैं आप लोगों से सवाल आपकी गुजारिश करता हूँ, और अगले हफ्ते इंशाल्लाह जो है हमारा फॉर्मेट अभी जो पहला सेशन था हम यही रखेंगे कि पहले सेशन में दर्स हो जाएगा 50 मिनट का, उसके बाद आप 10 मिनट का एक ब्रेक ले लेंगे, और फिर हम सवाल जवाब का सेशन।
जी श्रोता के पास सवाल है, वो हैंड रेज करके एक सवाल आते हैं।
दीन और साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों ये चाहते हैं कि कायनात की हकीकत क्या है, और साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो दीन के मुकाबले में इसमें इतना कामयाब नहीं है, तो क्या साइंस और टेक्नोलॉजी का दीन के आधार पर अलग अलग नहीं मतलब, और इस गुफ्तगू से भी एक तारु या एक कॉन्फ्लिक्ट की सूरत
याद
तो पता
नहीं
क्योंकि
नहीं हदल एक है लेकिन दोनों के टूल्स डिफरेंट है। ठीक है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके टूल्स क्या है, हवा से फंक्शन है, उस टूल से वो चीजों की रियलिटी तक नहीं पहुंच सकते। दीन का कहना है कि इस टेबल की हकीकी वजूद ये नहीं है जो हम माइक्रोस्कोप में इसके मॉलिक्यूल्स देखेंगे, नहीं इसके अंदर एक इसकी बातें हैं, उसको देखने के लिए आप कोई जाहिरी आंख ये नहीं दिखा सकते, उसके लिए बातें ही आंख चाहिए।
एक
सुपरफिशियल तक ही जाएगी,
उससे एक डिसइंसेंटिव साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पैदा नहीं हो रहा है।
टीम ने हमेशा इल्म हासिल करने की शायद जितनी इस्लाम ने अपना इस्लाम शुरू होता है एक तरह और बल्कि कायनात की इब्तिदा वो जब हजरत आदम का जो किस्सा है कि फरिश्तों ने कहा कि भाई ये कैसे अफजल है हम, तो खुदा ने उनको अल्लामा आदम अस्मा, खुदा ने अपने अस्मा की तालीम दी, तो तालीम से तो कायनात का आता हुआ, और फजीलत जो हजरत आदम को फरिश्तों पर दी गई है उन अस्मा के जानने की वजह से, वो अस्माए को जानने की वजह, अस्माए आजम को जानने की वजह। तो दीन ने हमेशा इल्म की तारीफ की है और इसकी जो है सपोर्ट किया है इसको, लेकिन दीन के अहकाम पर करते हैं। जो हमारा जो मटेरियलिस्टिक माशरा है उसके नजदीक डॉक्टर बनना इसलिए जरूरी है कि मुझे पैसा कमाना है, मटेरियलिस्टिक दुनिया में ये है, वो जो इलाहाबी जहानबीनी जो आपको बताई गई है उसके नजदीक मैं किसी की जान बचाऊं क्यों बचाऊं, मुझे मट्टी हो जाना है, मेरा अमाल कोई देख रहा है क्या, मैं अपने पैसे कमाऊंगा, मैं अपने आप को देखूंगा। उसमें एक चीज बताना भूल गया कि इलाहाबी जहानबीनी इंसान महवर है, उसका सेंट्रल फोकस जो है वो इंसान है, जो चीज इंसान के लिए अच्छी लग रही है जो उसको बेहतर लग रही है हम इंसान को देखेंगे, और जो तौहीदी जहानबीनी है वो खुदा महवर है, वो ये देखता है खुदा क्या कह रहा है। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के अहदाफ में। दीन ने साइंस और टेक्नोलॉजी को कभी भी डिस्करेज नहीं किया, लेकिन उसने कहा अपने हदफ को सही करो, डॉक्टर इसलिए नहीं बनो कि सिर्फ पैसा कमाना है, पैसा भी कमाना है लेकिन लोगों की खदमत भी करनी है। इंजीनियर सिर्फ इसलिए नहीं बनो कि जिस तरीके से भी पैसा कमा सकते हो पैसा कमाओ, नहीं जायज तरीके से पैसा कमाओ। इसी तरह दीन ने दुनिया कमाने को मना नहीं किया गया है। हमारे जहन में आता है कि मसलन यहाँ पे आके लेक्चर लेना तो ये इस्लाम है, लेकिन अपने ऑफिस में वर्क करना इस्लाम नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन दीन ये कहता है कि अपना दुनियादारी को दुनिया के कामों को वसीला बनाओ आखिरत के लिए। मैं इसलिए पैसा कमाऊं ताकि मैं सुकून से मैं एक ऐसा घर ले सकूं जिसमें मैं सुकून से इबादत कर सकूं, मैं किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं। ये इस तरीके इस हजम के लिए पैसा कमाना बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ पैसा की हवस और दुनियावी हवस में ही लग जाऊं तो ये जो है बस फर्क जो है हमारे अहदाफ में, जो इस्लाम ने भी फिजिशियंस पैदा किए, केमिस्ट्री की इब्तिदा भी इस्लाम ने की, लेकिन उस वक्त इल्म जो था उसका अदब मादा परस्ती नहीं थी, पैसा कमाना ही नहीं था, हकीकत तक पहुंचना था कायनात की। लेकिन आज अफसोस के साथ जो है तो हमें साइंस और टेक्नोलॉजी से इनकार नहीं है, लेकिन उसके एहजाब से हमें शिकायत है।
जो आपने पैसे के तीन और पांच आवाज बताए ये हमारे दीन इस्लाम की रूल है, क्या कोई दूसरा मजहब इनको प्रेफर करता है, इनको फाइंड आउट करता है इन्हीं सवालों के जवाब के लिए, जैसे जुडिज्म है या क्रिश्चियनिटी है, वो इनको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं?
देखिए ये तो एक बुनियादी तरीन सवाल है कि हर मकसद पे तुमको जवाब देना पड़ेगा। हम हर मकसद पे जैसे पूछेंगे कि तुम्हारे नजदीक इंसान का आगाज कैसे होगा, तुम्हारे नजदीक इंसान का अंजाम क्या है, तुम्हारे नजदीक जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, तो ये तो हमारे ये समझे के कुल्ली सवाल है जो हम हर मकसद फिक्र से पूछ सकते हैं। अगर इलाहादी आइडियोलॉजी है, इलाहादी और आइडियोलॉजी मसलन ह्यूमनिज्म आ जाते हैं, एग्जिस्टेंशियलिज्म आ जाता है, और पता नहीं फासिज्म और पता नहीं कौन कौन से इज्म आ जाते हैं, उनसे हम ये पूछते हैं कि तुम्हारे नजदीक इंसान का आगाज कैसे हुआ, इंसान का अंजाम कैसे हुआ, और तुम्हारे नजदीक जिंदगी कैसे गुजारनी, तो ये ऐसे सवाल आते हैं कि हर मकतब फिक्र से पूछे जाएंगे और उसको ये क्लियर जवाब देना पड़ेगा। हमारे दीन ने इसको बहुत ही, क्योंकि बुनियादी तरीन चीजें हैं, इस पे बहुत ज्यादा तवज्जो दी है। हमारे जो उलमाए कलाम मुतकल्लिमीन, आज अकायद कहा जाता है, माजी में इसको इल्मे कलाम कहा जाता था, दोनों में तकरीबन एक ही चीज है तकरीबन, तो मुतकल्लिमीन ने हमारे डिटेल में बहस किया हमारे उलमा ने कि खुदा है अखली बुनियादों पर किस तरीके से है, कैसे साबित होता है और उसकी सिफात क्या है, फिर सिफात के बाद आया कि नबी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अगर नबी है तो वो जो कानून लाएगा उसकी पाबंदी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, और इस तरीके से आगे चीजें।
جو آپ نے دو ماڈل پیش کیے تھے اس میں مطلب یہ کہ ایک ماڈل تھا کہ جس میں آپ کی حواس خمسہ کے علاوہ جو ہے وہ آپ نے قلب سے جو ہے وہ آپ دنیا کی معرفت دنیا کی اصل حقیقت ہے وہ آپ کا ہو سکتی ہے تو وہ قلبی معرفت حاصل کرنے کے لیے مطلب ہمیں کیا بنیادی ضروریات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں زندگی دنیا کی حقیقت ہم منکشف ہو سکے مطلب ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسا کیا تم گروز میں اپنے بتائیں گے اس طرف کچھ نشاندہی کریں گے تاکہ ہم وہ چیز جو ہے وہ بڑا میجر فرق ہے ایک تو آپ صرف ہوا سے خمسہ سے حاصل کر رہے ہیں ایک آپ کے پاس ایکسٹرا ایک ایڈیشنل چیز آ رہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ میجر فرق ہے جس کی وجہ سے ریئلٹی آپ جان سکیں گے
اصل میں یہ عقائد کا ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن انشاءاللہ جیسے جیسے ہماری گفتگو بڑھتی جائے گی جو بنیادی ترین چیزیں ہیں نا کہیں بیچ بیچ میں آتی چلی جائے گی اور انشاءاللہ ہم اس کو جانتے چلے جائیں گے اصل یہ آخری سوال ہے اس کے بعد ہمیں تو دیکھیں دین میں کچھ افکار ہوتے ہیں اعمال ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں عقائد سب سے پہلے دین کہتا ہے کہ اپنی بنیادوں پر ٹھیک ہے دین کو ثابت کرو یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کا دین جو ہے وہ مذہب تشریح تھا تو ہمارا بھی مذہب تشریح ہونا چاہیے نہیں اس کو ہمیں پیورلی اپنی بنیادوں پر دیکھنا چاہیے واقعی خدا ہے یا نہیں ہے واقعی کون سے واقعی حضرت محمد آخری نبی ہیں یا نہیں اور اس کے بعد پھر قیامت یعنی عقائد تو پہلے ثابت کرو اپنی بنیادوں اس کے بعد جو دین ثابت ہو جائے حق پر اس کے مطابق عمل کرو اس کو کہتے ہیں احکام جو ہمیں توزیع مسائل سے حاصل ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس میں ہم تکلیف کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو دین آیا ہے انبیاء نبی کی تعلیمات اور آئمہ کی تعلیمات وہ ہمارے مجتہدین کیا ہیں ریسرچ کر کے ہمیں دے دیتے ہیں کہ انہوں نے بتایا اس طرح سے نماز پڑھو اور نماز اتنی پڑھنی ہے روزہ بھی رکھنا ہے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے اور یہ عمل نہیں کرنے یہ ہوں گے احکام اب صرف دین یہ نہیں کہتا یہ نہیں کہتا بس نماز پڑھ لو روزہ رکھ لو بلکہ کہتا ہے مسلسل نماز پڑھو مسلسل انفاق کرو مسلسل جو ہے علم حاصل کرو اس سے کیا ہوگا ہماری روح میں یہ اس کو کہتے ہیں اخلاق کہتے ہیں اخلاق یعنی اتنی نماز پڑھو کہ نماز آپ کی روح میں ایک اس کو ہم کہتے ہیں ملکہ روحی ملکہ یعنی آپ کی روح میں پیوست ہو جائے وہ صفات صدقہ اتنا دو کہ پھر بغیر صدقے کے نہیں رہ سکتے سچ اتنا بولو کہ اگر کوئی کہے ایک لہجے کے لیے جھوٹ بولو اب نہیں بول سکو کہ ہماری روح ایسی ہے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں روح عمل کے اثرات ہماری روح پر ہوتے ہیں اور وہ پوٹینشلس ہمارے تبھی ہوتے چلے جاتے بن جاتا ہے مگر ٹھیک ہے اور یہ اخلاق کی دوسری بس صرف ایک دفعہ نماز نہیں پڑھنی ہے نماز اتنی پڑھنی ہے اتنی پڑھنی ہے کہ ہم بغیر نماز کے نہ رہ سکے اگر کبھی ایک قضا ہو جائے تو ہم نے پریشانی ہوگی ہماری نماز قضا ہوگی برعکس بھی ہوتا ہے جس کو بالکل نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے یعنی اس نے کیا کیا اتنی نمازیں ترک کی ہیں اب وہ ملکہ بن گیا اس کی روح میں اب اس کو کہہ گیا آج ایک دن کے لیے صرف ظہر کی نماز پڑھ لو مشکل ہے اس کے لیے کیوں کیونکہ ملکہ بن گیا اس کی روح میں عقائد سے احکام بنتے ہیں احکام سے اخلاق بنتا ہے اس کو وہ بچوں کی کتابوں میں ہم نے دیا ہے एक छोटा सा कोर्स बनाया है, तो उसमें कहा है कि हकायक क्या है, दीन की जड़ें, दीन की जड़ें उसूल दीन, दीन की जड़ें पांच हैं, ठीक है। तो ये हकायक क्या है, ये जड़ें, हकायक से अहकाम बनता है, और अहकाम के बाद जो उसका जो फ्रूट है अहकाम का वो क्या है, अखलाक है। वो अकायद जो कि अमल में तब्दील ना हो सके, बेकार है। मैं यहां पे जो है ना दो साल तक हम क्लासे लेते रहे, साबित कहते रहे भाई खुदा है, खुदा ऐसा है, ठीक है, रसूल है, आइमा ऐसे हैं, लेकिन हमारे अमल में खुदा ना आए, हमारे अमल में नबी ना आए, हमारे अमल में आइमा ना आए, इमाम ना आए, ऐसे अकायद बेकार, सिर्फ एक थ्योरेटिकल गुफ्तगू है और कुछ नहीं। तो बस दीन हमारा, इसलिए हम कहते हैं हमारा दीन, दीन पोया फारसी में कहते हैं जिंदा दीन है, अमली दीन है, तौहीद हमारी तौहीद अमली है, इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि तौहीद वगैरह नजर ही नहीं है, जिंदगी में भी तौहीद नजर आनी चाहिए, हमारे आमाल में भी तौहीद नजर आनी चाहिए। बस अगर हकायक अहकाम में तब्दील ना हो सके, बेकार है, फासिल हो जाएंगे। और अहकाम अगर हमको अखलाकियात ना दे सका, हम वैसे तो पांच वक्त के नमाजी हैं, ठीक है, हम वैसे तो जो है वो रोजा हज ज़कात होम्स, ठीक है, एक एक तौज़ीह मसाइल के एक एक उस पर अमल करते हैं, लेकिन अगर हमारी अखलाकियात सही नहीं है, हमारी गुफ्तार हमारी सीरत से दीन नहीं छलकता, तो ऐसा अहकाम किसी फायदे का नहीं है। अगर अकायद अहकाम में तब्दील ना हो, बेकार है, अहकाम अकायद अखलाक में तब्दील ना हो, बेकार है। इसीलिए कहते हैं अखलाक अहादीस में भी है, अखलाक दीन का समर हल है। अगर मुसलमान में अखलाकियात ना हो तो यानी दरवाजे मुसलमान नहीं, सही। कभी मौका मिला तो इसमें और भी बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह इस गुफ्तगू में तो हम जारी रखेंगे। जाहिर है कि चंद क्लासेस लगेंगे, मैं आपके मैं आपको समझ पाऊँ और आप भी जो है वो मेरी फ्रिक्वेंसी पे कैच कर पाए, तो दो या तीन क्लासेस मामूला लगती हैं कि हमारे में आपस में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। तो फिर ये कि हम क्लास के बीच में ही सवाल ले सकेंगे और वो ज़्यादा इंटरेक्टिव सेशन होगा। हकायक की गुफ्तगू मामूला वैसे बहुत खुश राय टॉपिक है, जाहिर है कि अगर मैं अखलाकी गुफ्तगू करूँ तो आदमी को लगा, लेकिन मुझे जो कि बताया गया है कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग प्रोफेशनल्स हैं और एक एकेडमिक माहौल का टाइप को पढ़ना चाहते हैं, इसलिए मैंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है और इंशाल्लाह हम गुफ्तगू को आगे लेकर चलेंगे और पहले से ज़्यादा जो है सवाल सेशन को भी ज़्यादा रिजल्व करेंगे। आखिर मैं दुआएं होंगे।